क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में आपका परिचय डॉक्टर संगीता सक्सेना से होगा और आज का विषय है अपने देश में हिंदी की दशा व दिशा। आपको याद दिला दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले डॉक्टर संगीता सक्सेना जी के बारे में एक लघु परिचय। युवा साहित्यकार डॉक्टर संगीता सक्सेना प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जयपुर कार्यालय में उपमंडल अभियंता जयपुर के पद पर कार्यरत है। आपकी विभिन्न विधाओं में 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको अनेकानेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रदान मॉरिशस का कविता का प्रथम पुरस्कार व वाचन का द्वितीय पुरस्कार शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से महात्मा गांधी द्विवार्षिक पुरस्कार, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हिंदी सेवा पुरस्कार 2018 शामिल है। इसके अलावा आपको और कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आप हिंदी की सेवा में सालों से लगी हुई है। आपका जन्म जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी पढ़ाई हिंदी में एमए और पीएचडी तक हुई है। तो आइए डॉक्टर संगीता सक्सेना जी को सुनते हैं।
सभी सुहृदजनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता सक्सेना आपसे मेरे देश भारतवर्ष में हिंदी की दशा और दिशा पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। मैं बीएसएनएल जयपुर राजस्थान भारत में उपमंडल अभियंता राजभाषा के पद पर कार्यरत हूँ एवं एक सक्रिय साहित्यकार हूँ। वेदों और पुराणों की भाषा संस्कृत है, जिसकी जननी कोटि कोटि जन की जिसमें संचित है कथनी करनी। सूर कबीर तुलसी जायसी भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसाद पंत निराला महादेवी दिनकर अज्ञे के हाथों पली पोसी हिंदी हमारे विकासोन्मुख देश में सहज सशक्त और सुदृढ़ स्थिति में है और विकास के हर क्षेत्र में अनवरत आगे बढ़ने को आतुर है। आधिकारिक तरीके से 14 सितंबर को हमारे देश भारत में और 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व में हिंदी दिवस पूरे मान सम्मान और जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। राजभाषा होने के साथ साथ हिंदी सर्वाधिक प्रदेशों में बोली जाने वाली जन जन की हृदय भाषा भी है। सन 1875 में स्वतंत्रता सेनानी आचार्य केशव चंद्र सेन ने हिंदी को हिंदुस्तानियों की आत्मा में बसी भाषा बताते हुए लिखा था कि अपनी बात को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का सरलतम मार्ग है हिंदी, क्योंकि हिंदी भारत के जनसामान्य की आत्मा में बसती है। ऐसी लोकप्रिय हिंदी हर क्षेत्र में राजभाषा, शिक्षा, रोजगार, विज्ञापन, साहित्य, राजनीति, तकनीकी, प्रशासनिक सेवाओं, अनुवादीकरण, पर्यटन, राष्ट्रीय एकता, मनोरंजन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भारत के भाल पर लिखा आभास है हिंदी, जन जन के मन में जागता एहसास है हिंदी, वंदन करें, नमन करें और उतारें आरती, मेरे स्वतंत्र राष्ट्र का इतिहास है हिंदी। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की शासकीय स्थिति की। 29 राज्यों वाले विशाल लोकतांत्रिक देश भारत की एकता अखंडता को सर्वोपरि रखते हुए संविधान के भाग 5, 15 व 17 की धाराओं में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को नियमबद्ध किया गया था। संविधान में हिंदी राजभाषा होने के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची की 23 राजभाषाओं में भी शुमार है। राजभाषा अधिनियम 1963, यथा संशोधित 1967, राजभाषा नियम 1976 की अनुपालनाएं केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कराए जाने के लिए प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा अनुभाग होना अनिवार्य है। इन कार्यालयों के हिंदी कार्यों की तिमाही छमाही रिपोर्टें राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की साइट पर ऑनलाइन अपलोड की जाती हैं व उनकी समीक्षा कर निर्देश जारी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, संसदीय समिति के माध्यम से हिंदी के कार्य विस्तार पर सुनियोजित तरीके से नियंत्रण रखा जाता है। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से प्रोत्साहित किया जाता है। विभागीय गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा लेखन अभिरुचि जगाई जाती है तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति आदेश व राजभाषा विभाग के अन्य आदेशों से राजभाषा हिंदी की स्थिति बेहतर होती जा रही है। शैक्षणिक बुनियाद की मजबूत ईंट है हिंदी। यद्यपि प्रतंत्रता काल में लागू की गई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय जनमानस में अभी भी अपना अधिकार जमा रखा है, तथापि शिक्षा के दोनों माध्यम समानता से भारत में मुहैया है। एक अबोध बच्चा बताए जाने वाले तथ्य के संपूर्ण परिवेश को हिंदी अथवा अपनी मातृभाषा में ही आत्मीयता और सहजता से ग्रहण कर पाता है, पराई भाषा में नहीं। उच्च शिक्षा के लिए भी हिंदी माध्यम के रास्ते खुले हैं। जो पाठ्य सामग्री हिंदी में नहीं है उसे संबंधित विभाग उपलब्ध करवाने को कटिबद्ध हैं। भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि वह रोजी रोटी से जुड़ी होनी चाहिए। मेरे देश में हिंदी रोजगार संवाहिनी भी है। देश के रोजगार के लिए हिंदी चाहिए ही थी। मल्टीनेशनल कंपनियों को भी व्यापार के लिए जन जन से जुड़ना होता है तो उन्हें भी हिंदी दक्ष कर्मियों की आवश्यकता होती है। राजभाषा कैडर के पद तो हैं ही। आह्लादकारी सच है कि बढ़ती भौतिकता के कारण विज्ञापन का संसार टीवी, रेडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया, प्रिंट में तेजी से विकसित हुआ है। अब सीमित समय के कीमती विज्ञापनों की टैगलाइन हिंदी में होगी तभी तो उपभोक्ता के दिल को छुएगी। ये दिल मांगे मोर, दाग अच्छे हैं, मैगी 2 मिनट, नो उल्लू बनावें, ठंडा ठंडा कूल कूल, हेलो हनी वनी आदि आकर्षक विज्ञापन हिंदी में ही हैं और 130 करोड़ जनता के दिल में सीधे उतरते हैं। साथियों, कंप्यूटर के मसीहा बिल गेट्स ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकारा है कि देवनागरी लिपि और इस भाषा में लिखी जाने वाली संस्कृत एवं हिंदी भाषा तार्किकता के आधार पर कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और वैज्ञानिक भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का अपना URL लॉन्च किया जाना भी इसकी तकनीकी साध्यता ही है। सर्च इंजन गूगल में हिंदी के अनेक झरोखे सहज ही खुलते चले जाते हैं। हिंदी की अनेक वेबसाइट्स बन चुकी हैं। इंटरनेट पर हिंदी भाषा व साहित्य का प्रसार हो रहा है। हिंदी में पावर पॉइंट प्रस्तुतियां अधिक कारगर सिद्ध हो रही हैं। ब्लॉग्स की संख्या बढ़ रही है। यूनिकोड फॉन्ट और बोलकर टाइप करने की सुविधा ने तो हिंदी टाइपराइटिंग में जैसे क्रांति ही ला दी है। भारत में तकनीकीकरण की पक्की मित्र है हिंदी। मित्रों, भारत के ख्यातनाम वैज्ञानिक शिक्षाविद नीति नियंता श्री डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के निर्देशन में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में गठित कोठारी समिति की सिफारिशों द्वारा वर्ष 1989 में प्रशासनिक सेवाओं में पहली बार अपनी भाषा में लिखने की छूट मिली थी। इस साहसी निर्णय की बदौलत ही परीक्षार्थियों की संख्या एकाएक 10 गुणा तक बढ़ गई थी। सभी प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षार्थियों को हिंदी अंग्रेजी देने का विकल्प उपलब्ध है। भाषिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान करने में अनुवाद सेतु का काम करता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो समयबद्ध व व्यवस्थित तरीके से हर क्षेत्र में संबंधित मानक शब्दावलियां तैयार करने में जुटा है ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग में एक रूपता स्थापित हो सके। साहित्य अकादमियों, प्रकाशकों और साहित्यकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को हिंदी में और हिंदी के साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुवादित करने की धजा उठा रखी है। परिणामतः हमारे देश में हिंदी अनुवाद की डगर पर तीव्रता से आगे बढ़ रही है। मित्रों, सच कहूँ तो राष्ट्रीय एकता की अस्थि मज्जा है हिंदी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हमारे यहाँ कहावत है, 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। भारत के अधिकांश भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी के रूप कदम कदम पर बदलते हैं किंतु तासीर नहीं। हर दिल को जोड़ने की ताकत रखती है ये। मैथिली शरण गुप्त की शब्दों में, हिंदी का उद्देश्य यही है, भारत रहे अविभाज्य, यो तो रूस और अमेरिका जितना है उसका जनराज्य। बंधुओं, मेरे देश में मनोरंजन के क्षेत्र में भी अग्रणी है हिंदी। बॉलीवुड में 1000 फिल्में प्रतिवर्ष हिंदी में बनाई जाती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस करती हैं। दक्षिण भारतीय भी बहुत ही सहजता से इन फिल्मों को देखते हैं और हिंदी को गुनते हैं। टीवी सीरियल्स, कॉमेडी शो, लाइव शो, प्रतियोगिताएं आदि सभी व्यवहारिक रूप से हिंदी को आगे बढ़ा रही हैं। आवागमन की सुविधाएं सहज होने से केवल वैश्विक ही नहीं अंतर्देशीय पर्यटन भी बहुत बढ़ा है। हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज और इतिहास जानने के लिए विदेशी पर्यटकों को भी हिंदी सीखना अच्छा लगता है। और जब उत्तर भारत का नागरिक पर्यटक बनकर दक्षिण में जाता है तो वह वहाँ की भाषा के सामान्य शब्द सीखने और बोलने में फख्र का अनुभव करता है। इसी तरह दक्षिण प्रांत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दक्षिणवासी सामान्य हिंदी समझते बोलते हैं। पर्यटन इंडस्ट्री के कारण हमारे देश में हिंदी को प्रचार प्रसार मिल रहा है। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए जाने का प्रकरण हमारे लिए एक गौरवपूर्ण उदाहरण बन गया है। हमारे देश की राजनीति की भाषा की बात करें तो वह केवल एक है, हिंदी। अभी 2019 के चुनाव में यही देखने में आया कि सभी पार्टियां, चाहे वह हिंदी भाषी क्षेत्र की हों या अहिंदी भाषी क्षेत्र की, नेतागणों ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकांशतः हिंदी का ही उपयोग किया। जिन नेताओं को हिंदी नहीं आती, वे राजनीति में अपना कैरियर बनाने के लिए हिंदी सीखते हैं और बोलते हैं। चुनाव आयोग अपने कामकाज में द्विभाषा हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करता है। मित्रों, ये हिंदी साहित्य का जुड़ाव ही तो है जो हम और आप आज मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के क्षितिज कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में मेरे देश भारत में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में निरंतर लेखन हो रहा है। कविता, कहानी, उपन्यास की नई शैलियां सामने आ रही हैं। तकनीकी ने हिंदी लिखित पुस्तकों पर निर्भरता का एक अधिकार तोड़ दिया है। ऐप, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि ने हिंदी साहित्य को नए पंख दिए हैं। रचनाओं का लिखित ही नहीं, उच्चरित रूप भी अब प्रचलित और प्रशंसित है। शासकीय पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा पिछले कुछ वर्षों में पंजीकृत अपंजीकृत संस्थाएं हिंदी साहित्य के लिए प्रतियोगिता, प्रोत्साहन, पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित कर इसके विकास हेतु जुटी हुई हैं। कबीर की सटीक उक्ति भाखा बहता नीर की ही अनुपालना में भारत में आज हिंदी की सजता प्रभावमान है। यह अपने साथ अन्य भारतीय भाषाओं व अन्य वैश्विक शब्दों को सहजता से अपनाती विश्व भाषा बनने की राह पर चलती ही जा रही है। हिंदी किसी एक वर्ण, जाति, धर्म, मजहब की नहीं है। हिंदी भारत की है, मॉरिशस की है, इंग्लैंड की है, सारी दुनिया की है। और चार पंक्तियों के साथ इजाजत चाहूंगी। मैं प्रार्थना सी, मैं अजान सी, मैं शवत सी, मैं ईश प्राण सी, मैं स्पंदन, मैं अभिनंदन, मैं कुहू कुहू, मैं मुहुर मुहू, मैं कलकल सी, मैं छलचल सी, मैं आपके हृदय में स्पंदित हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी पर मेरे विचार सुन रहे दुनिया के कोने कोने में बैठे माननीय श्रोताओं का धन्यवाद।
प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। अभी आप भारत की युवा साहित्यकार डॉक्टर संगीता सक्सेना जी को सुन रहे थे, जिन्होंने भारत में हिंदी की दशा व दिशा पर गहराई के साथ और खोजपूर्ण कार्य के पश्चात अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संगीता सक्सेना जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने खोज कार्य के पश्चात हमारे सामने अपने विचार रखे। आपसे विदा होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में हमारे मित्र सुनील लक्ष्मण जी का तकनीकी सहयोग रहा। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।